तो जैसे आप बहुत संख्या में वृंदावन में पधारे, सभी को पता है कि आज से पूरे साल से साल के सबसे पावन दिन शुरू होने जा रहा है। मासानां कार्तिका मासं देवानां मधुसूदन, जैसे देवों में भगवान मधुसूदन सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ हैं, ऐसे समस्त मासों में भक्तिप्रद मास है कार्तिक मास। यद्यपि भगवान गीता में मास में अपने विभूति मासानंग मार्गशीर्षो हम कहें, लेकिन फिर भी कार्तिक मास की अधिदेवी साक्षात श्री राधिका जी हैं, इसलिए ये भगवान के अति प्रिय है, इसकी छिपा कर रखें, मार्गशीर कह दिए। ये कार्तिक मास एक ऐसे भक्ति के लिए सु अवसर है। भक्ति रसामृत सिंधु में उसके समरी लिखते हुए हमारे संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी ने ये लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना निज भक्ति कोई साधारण लोग को ऐसे नहीं देते हैं। जो बहुत सीरियस है, अति गंभीर भक्त को अपने भक्ति दान देते हैं, नहीं तो भुक्ति मुक्ति देकर ऐसे ही पीछा छुड़ाते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई गंभीर हो ना भी हो, कुछ भी हो, अगर इस कार्तिक महीना में इस ब्रजमंडल में माथुर मंडल में आकर के साधारण भक्ति अंग को जाचन करता है तो भगवान उसको अपनी निज भक्ति दान करते हैं। ये विशेष शुट केवल इस काल का है, ये अभूतपूर्व काल, ये अभूतपूर्व स्थान है, ये दोनों का संयोग है। कार्तिक फिर इसमें ब्रज, ये दोनों भी अपने सीमा पर पराकाष्ठा रखते हैं। और इस कार्तिक मास जैसे जानते हैं भगवान की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान की विरह भक्ति, विप्रलंब भक्ति। और इस विरह भक्ति का प्रमाण, उसका शुरुआत, उसका प्रतिष्ठा इस ब्रजमंडल में इस कार्तिक महीना में हुआ था। भगवान की सबसे आनंददायिनी लीला श्री रास लीला, और उसी में जो रस है ये भगवत विरह, उसी में हुआ था। ऐसे इस क्षेत्र में कुंवर और कार्तिक दोनों को ही शरद माना जाता है। तो आज की जो पूर्णिमा है वो भी शरद पूर्णिमा, वो आगामी महीने के बाद जो पूर्णिमा होगा कार्तिक महीने में वो भी शरद पूर्णिमा है। ये दोनों शरद पूर्णिमा के बीच में जो महीना है वो है कार्तिक मास। दोनों शरद पूर्णिमा के बीच में, दोनों में भगवान की रास है। और इस महीना में, इस महीना का नाम अपने वैष्णव पंजिका में सिद्धामदर मास इसलिए कहा गया कि भगवान के जितने लीला है, सर्वश्रेष्ठ लीला है उनके बाल लीला, सबसे मनोहारी, सबसे परम आकर्षक लीला है उनके बाल लीला। और इन बाल लीलाओं में जितने भगवान की मनोहारी बाल लीला है, उनमें से परम आनंददायिनी ये लीला है, बड़े अद्भुत, बड़े बड़े लोगों को चमत्कृत कर देता है, आश्चर्य में डाल देता है भगवान की ये लीला, जिसमें भगवान स्वयं अरेस्ट हो गए, अरेस्टेड, बंधे हुए ठाकुर जी, हाय हाय रो रहे हैं, डरते मारे भागते हुए पकड़ा गए और बांधे गए। और इस रोते हुए बांधे हुए भगवान को हम इसी महीना भर आरती उतारेंगे। हम भी भक्त भी, और क्या कहें, वो भी जैसे हम भी ऐसे। अरे तुम भगवान की आरती क्यों करते, ना भय से बचने के लिए, अरे ये स्वयं भयभीत है, रो रहा है बेचारा बंधे हुआ, और उन्हीं को आरती, हाँ हमारे भगवान भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही। तो इस भगवान की दाम उदर
कई कई कहते मैया ने उनके हाथ पकड़कर बांध दी, नहीं 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 वो कमर में बांधी थी, नहीं तो दाम करा होते, दाम उधर नहीं होते, दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब कमर पेट। तो जसोदा मैया ने उनको कमर में रस्सी बांध दी थी उखल के साथ में, इसीलिए इस समय का नाम पड़ा दामोदर। भगवान की अति श्रेष्ठ उष्टभ लीला से दामोदर लीला किए थे। केवल इतना नहीं, जैसे मैं कहा कि रासलीला में शुरुआत हुआ है इस पूर्णिमा से, भगवान को विशेष आनंद प्रदानकारी आज के पूर्णमासी, आज के पूर्णिमा में चंद्रमा का पराकाष्ठा है, परिपूर्णतम प्रकाश है। आज के पूर्णिमा और आगे एक महीने के बाद जो पूर्णिमा होगा, ये दोनों शरद पूर्णिमा साल भर में जितने पूर्णमासी होता है सबसे टॉपमोस्ट है, सबसे परिपूर्ण प्रकाश होता है, अमृत बरसता है उसमें। इसीलिए तो आप सुने होंगे आज रात को सब खीर बना करके छात में रखेंगे, अमृत बरसेगा उसमें। लक्ष्मी जी इस अमृतमयी ज्योत्सना में घूमती है, और इसी महीना में भगवान ने अपने भक्त भया भक्त वत्सलता अपने ब्रजजन पालन की लीला से गिरिराज धारण भी किए थे, गिरिराज धारण लीला भी किए थे। और इसी महीना में आप लोग जानते हैं कि साधारण लोग आप लोग धनतेरस मनाते ना, इसमें कहा गया कि समुद्र मंथन शायद इसी समय हुआ होगा, धन्वंतरी देव अमृत के साथ में और आयुर्वेद के साथ प्रकट हुए थे, धन्वंतरी आए थे प्रकट। भगवान ने इसी महीना में नरकासुर को वध किया था, और ऐसे अनेक अनेक लीलाओं में समन्वित ये महीना है कार्तिक मास, जिसमें भक्ति के लिए अति रोचक है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में इस माथुर मंडल में जो निवास करता है और जो भक्ति करता है तो उनका तो कहना ही क्या है। इस कार्तिक महीना में दीप दान के बड़े प्राधान्य है, स्नान के, दीपदान के, पूजा के, स्तुति के, सबका प्रधान है। भक्ति के कोई भी अंग इस महीना में किया जाए इस स्थान पर उसका करोड़ गुना पर गुणित हो जाता है। तो इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं इस महीना को। एक बार भक्त लोग ने, प्रभुपाद जी ने बोले कार्तिक मास ऊर्जा व्रत है, माथुर मंडल में ऊर्जा व्रत मथुरा वास करते हैं। भक्त लोग, प्रभुपाद ऊर्जा व्रत क्या है हमको थोड़ा बताइए। प्रभुपाद हंसकर बोले ऊर्जा व्रत और कुछ नहीं है, चांट हरे कृष्ण नॉन स्टॉप। वो प्रभुपाद जी ने इसी को आंसर दिया, बोले हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करते बोलते रहो, वही ऊर्जा व्रत है। तो हम लोग ऊर्जा व्रत क्या करें, आकाश दीप जलाएं, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो खूब भजन कीर्तन करो, खूब दीपदान करो, खूब आनंद करो, ब्रज परिक्रमा करो, जितने सब भक्ति के अंग है सब कुछ करो। और जैसे मैं कहा कि इस महीना का नाम ही दामोदर मास हो गया, भगवान की बाकी जितने लीलाओं के सारे लीलाओं में टॉपमोस्ट लीला किस लिए, क्योंकि सभी जानते हैं भगवान भगवान है, उसमें से कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण, जितने ईश्वर है उसमें जितने और ईश्वर उन्हें परमेश्वर है, सर्वेश्वरेश्वर है कृष्ण, परिपूर्णतम भगवान है। ना जाने अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितने चतुरानन, कितने पंचानन, कितने जोगिंद्र मुनिंद्र, उनको आपने ध्यान से बड़े सतर्कता से ध्यान में मन लगाते हुए उनको दर्शन नहीं पाते, दर्शन नहीं कर पाते हैं। और उन जोगी दुर्लभ देव दुर्लभ भगवान कृष्ण को मां जसमती अपने अगाध वात्सल्य प्रेम के कारण बाएं हाथ में पकड़ करके दाएं हाथ में छड़ी लेकर के डांट मारे, डांटी, भय दिखाई और बांध डाली। ओहो, जिनको ध्यान में पकड़ना बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र के लिए कष्टकार है, उन्हीं को पकड़ डाली, पकड़ में आ गए। हाँ, पकड़ में आ गए।
केवल पकड़ में नहीं आए, जिनको बड़े बड़े देवता मुनि ब्रह्मा शिव आदि चुने चुने श्लोक से, उत्तम श्लोक बड़े बड़े चुने हुए श्लोक से उनकी स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, वो उनको डांटी, तिरस्कार की, तिरस्कार वाक्य कही, स्तुति क्या करे, तिरस्कृत करी उनको। अरे नटखट बानर बंधु, चतुर चुड़ामणि चोर के सरदार, ऐसे करके गाली दी उनको। केवल गाली दी नहीं, क्यों गाली दी, अपराध हो, बड़े अपराध कर दिए थे। अरे क्या अपराध कर दिए थे, अरे एक मटका फोड़ दिए थे, एक दही का मटका। आजकल जमाने में कितना, 10 रुपए में आता हो, 50 का हो गया, चलो 50 का मूल्य क्या है आजकल, कुछ नहीं है ना, नहीं तभी जमाने में तो पचा नहीं, 1 रुपया से और कम में मिलता होगा। 5 किलो दही था और एक मटका था मिट्टी का, कौन सा था, उसको फोड़ दिए, एक दही के मटका को फोड़ दिए थे, इसी के ये था उनके अपराध, इन्हीं के कारण उनको अपराधी ठहराया गया, भय दिखाया गया, पकड़कर अरेस्ट कर दिया गया। बाप रे बाप, महाप्रलय के समय वही पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड को कितने करोड़ों करोड़ों मटका होगा, मटका घर मकान क्या क्या सबको फोड़ फाड़ करके सीमेंट करके चूर्णीभूत करके अपने अंदर ले लेता, और कोई उनको अपराधी नहीं मानता, किसी के सामने अपराधी, अरे वही मालिक है अनंत कोटि ब्रह्मांड को, महाप्रलय सब चूर्णीभूत करके तोड़ कर रखते, कोई अपराध नहीं कह सकता उनको। और वही परिपूर्णतम भगवान परमेश्वर को आज एक सामान्य दही के मटका फोड़ने के कारण अपराधी ठहराया गया, यह अपराध। जिनको अब उनके उनके स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण करने से महाकाल भी भयभीत होता है, जमराज थरथरा जाते हैं, जिनके नाम श्रवण मात्रेण स्मरण मात्रेण वही साक्षात पुरुष को पकड़कर डांटा पिटा जा रहा है, भय दिखा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मां भय दिखा रहा है वो डरते नहीं, अरे नहीं, वो स्वयं डर रहे हैं, वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ मैंने गलती किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, इसीलिए तो हाथ जोड़कर मैया कुल मैया छोड़ दो, और नहीं करूंगा, छोड़ दो, इस बार छोड़ दो। बड़े अनुनय विनय करते हैं, अपने आप को अपराधी मान करके लज्जित होकर के अब बड़े बड़े अंजन पूरित विशाल नेत्र था, उस विशाल नेत्र में जो अंजन भरा हुआ था वो डांट के कारण बिल्कुल बाएं हाथ से ऐसे आंख को पोछ रहे थे, आंसू बह रहा था, और काला काला काजल निकल करके हाथ भी काला, मुंह भी और छोड़ा काला हो गया, काले के ऊपर और काला, ऐसी अवस्था रे, बिल्कुल डरावनी, बिल्कुल रो रहे थे, सिसक सिसक कर रो, त्रिरेखा का कंठ, कंठ से बिल्कुल रेखा दिखाई पड़ रहा था, ऐसे रो रहे थे, सचमुच रो रहे थे, डर रहे थे, मांझा सुमति को देख करके डांट रहे थे। अब इनको ये किसी को आश्चर्य नहीं कर देगा, बताओ सभी आश्चर्य, हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है, लेकिन संभव क्या हो ही रहा है, हो ही रहा है। और मां जसमती हो बोले क्यों बांध डाला उनको, क्यों बांध डाला, अब इतने सारे कंप्लेन आ रहा था, एक ही तो उनके लड़का था, अब ये उम्र में पूरे गांव वाले जितने उनके सखी जितने उनके सब थे सभी आकर रानी माता को कंप्लेन किए, तुम्हारा बेटा हमारे घर में जाकर चोरी कर रहा है, चोरी के कंप्लेन। अभी देखो 2 साल का लड़का नहीं हुआ, अभी से चोरी, चोरी के कंप्लेन, क्या चोरी किया है तुम्हारे घर में, माखन चोरी किया, जितने कंप्लेन आता था मां उसको सब कैंसिल करो, हट जाओ यहां से, चोरी करता माखन चोरी करता, अरे चो, माखन चोरी किस लिए कोई करेगा, चोरी कोई करता है कि अभाव के कारण,
उनके पास है नहीं वस्तु, अभाव के कारण चोरी करता है। मेरे घर में 9 लाख गई गांव मेरे घर में है, गो है, ट्रक लोड माखन है, तनो माखन ले जाओ, दे दूंगा तुझे डोनेशन में, तेरे घर में चोरी कर गया। एक ही तो लड़का है, कोई 10-20 थोड़ी ना है, उनके लिए थोड़ी मना है चोरी करेगा माखन। ये बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है, कोई इसको काट नहीं सकता। सब गोपियां बोले बात तो सही है, माखन तो तेरा घर में भरमार है लेकिन फिर भी चोरी कर रहा। अब तो जसोदा स्वीकार नहीं करते, हटो झूठ बोलती, तुम झूठ बोलते, झूठ बोल रहा है करके अब क्या कहें, अब सब बोले झूठ। तब लेकिन बार बार कंप्लेन हुआ, मां जसोदा सोचा वो कहा है कि मुझे झूठ मूठ हमेशा बोलते हैं, कुछ सही में क्या चोरी कर रहा है। तो मां जसोदा एक दिन बैठ करके सोचने लगी क्यों चोरी करेगी, मेरे घर माखन का तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, इतने प्रचुर परिमाण में माखन मेरा घर में है, फिर चोरी क्यों करती है। तो मां को समझ में आया, हाँ क्वांटिटी के कारण नहीं क्वालिटी के कारण है, क्वालिटी में गड़बड़ है क्या, क्योंकि मेरे घर में तो मैं तो राजमाता हूं, रानी हूं, मेरे घर में सकड़ दास दासी है, नौकर नौकरानी है, वही लोग सब माखन निकालते हैं, दधि मंथन करते हैं, और उनके घर में स्वयं गोपी अपने हाथ में, और अपने घर की माल और होटल की माल में फर्क होगा ना नहीं, और हमारे घर तो ये नौकरानी लोग सब करते हैं, हाँ? और उनका घर में अपने घर के माल है, इसलिए क्वालिटी में फर्क है, इसने मेरे लाला अपने घर के माल को पसंद नहीं करते क्वालिटी, उनके घर में चोरी करके खा। ये बात ही मन जसमती माँ के मन में आया, बोले मेरे लाला को तो पूरे गोकुल में सब जीवन प्राण करके मानते हैं, एक टक देखने के लिए पागल हो जाते हैं, प्राण सदृश मानते हैं, वो चोरी करके खाता है माखन, क्यों उनको तो बोलने से दे देंगे। अरे जिनको कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं, पूरे गोकुलवासी कुछ भी देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, वो उनको क्या माखन मांगने से नहीं देंगे। और वो सचमुच माखन खाएगा लाला, पूरा मटका देने के लिए तैयार, लेकिन वो भी जसोदानंदन क्या कम थोड़ी है, मैं मांग कर क्यों खाऊं, भिखारी थोड़ी हूं, मैं भी राजकुमार हूं, ब्रजराज कुमार हूं, ऐसे थोड़ी मांग कर खाऊं, अपना कमाई खाऊं और क्या, अब बाकी कुछ काम नहीं कर सकता, चोरी तो कर सकता हूं, मैं अपने करके खाऊंगा, अपने कमाई खाऊंगा, मांग कर थोड़ी खाऊंगा। तो इसलिए वो देने पर भी नहीं खाते थे, वो गोपीगण देते थे, लाला ले लो माखन खाओ ताजा माखन, हम नहीं खाते, हम भिखारी थोड़ी है तैसे देख लेंगे, उनके मुंह में डांट देंगे, वो जैसे रखकर चले पीछे से आकर चोरी कर खाएंगे। आप बोलेंगे चोरी कर, हम नहीं, वो अपने कमाई खाते हैं, वो बोलते हैं हम इसे मांगकर नहीं खाते, और शर्म भी लगता है, राजकुमार मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए पीछे से चोरी कर खा लेते हैं। तो लेकिन माता जी को लगा कि ये ठीक नहीं है, अभी अभी साल 2 साल कहे अभी से चोरी आगे चल के डकैत बनेगा तो और मेरा दोष होगा, तो अभी से उनको शासन करना चाहिए, सुधारना चाहिए। सुधारने के लिए बोला क्या सुधारू, कोई पकड़ में तो नहीं आता, कम से कम दूसरे के घर में चोरी करके ना जाए, मैं खुद अपने हाथ से माखन बनाऊंगी, इससे एक क्वालिटी के माखन बनाऊंगी कि मेरे लाला किसके माखन देखना तो पसंद नहीं करेगा, ऐसे हाई क्वालिटी माखन बनाऊंगी। तो इसलिए जसमती माँ ने नंद बाबा को बोल करके उनके 9 लाख गैया थे उनमें से चुन करके 1 लाख गाय को सिलेक्ट किया गया, और 9 लाख गाय के दूध निकाल करके 1 लाख गाय को पिलाया गया, बोले आप घास नहीं खाएंगे दूध पियो, और उन 1 लाख गाय जो दूध पी रहे थे उनमें से 10,000 गाय सिलेक्ट किया गया, उन 1 लाख गाय जो दूध पी रहे थे 9 लाख उनको दूध उनको पिलाया गया, और वो 10,000 गाय से 1,000 गाय और सिलेक्ट किया गया, उन 10,000 गायों के दूध उनको पिलाया गया, उन 1,000 गाय से इतने सिलेक्ट इतने चुने हुए गाय थे उनमें से 1,000 से 100 गाय चुने जो बिल्कुल दुनिया में बिरले गाय है, 100 गाय चुने उनको उन हजारों गायों का दूध पिलाया गया, बोले कोई घास पास नहीं का पिड़िया नहीं खाना दाना नहीं खाना कोई दूध खाओ। तो उन 100 गायों से 10 गाय चुने जो बिल्कुल कपिला गाय जैसा थे सर्व लक्षण संपन्न थे, इन 10 गायों को उस 100 गाय को दूध पिलाया गया, और उन 10 कपिला सर्व लक्षण गायों से एक ऐसे गाय चुने जो साक्षात सुरभि थी पद्मगंधा थी,
ऐसे गाय को उन 10 कपिला गाय के दूध पिलाया गया। उस पद्मगंधा सुरभि गाय के दूध स्वयं नंद बाबा स्वर्ण दोहनी पात्र लेकर के आपने हाथ से दूध निकालेंगे और माँ जसमती स्वयं उसको आउटेगी, गर्म करेगी अंगेठी में और स्वयं उसे जमा करके दधी जमा करके दधी मंथन करके माखन निकालेगी और उमरे लाला उसको खाएगा। इतने जत्न की थी अपने लाला की खुशी के लिए। अब करके उन्होंने दधी मंथन कर रही थी, अब दधी मंथन करने प्रयास तो कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने सारे दासी है। बोले थे रानी माता आप किसी काम करोगे, हम होते होते कभी नहीं हो सकता। अरे भैया मेरे लाला आपके, नहीं 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 वो आपके लाला हमारे लाला नहीं है क्या? जसमती माँ को पता है जितने नौकरानी दासी है वो भी नंद नंदन को अपने प्राण जैसा, अपने जीवन प्राण से अधिक मानते, अपने बेटा से भी अधिक मानते, उनको मना भी नहीं कर सकती। तो इसलिए किसी कारण से जसमती को चांस नहीं मिल रहा था अपने काम करने के लिए। लेकिन जब वो दिवाली के समय आया, इंद्र यज्ञ के अवसर आया तो सारे इतने काम आया वर्क प्रेशर, तो सारे दासियों को भेज दी काम, जाओ ये काम करो ये काम करो, घर खाली कोई नहीं दासी। तब माँ को सुजोग मिला, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज मैं खुद करूं। तो इसीलिए इस रात को जल्दी से उठ करके, अब जानते धूप आने से फिर माखन नहीं निकलेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सूर्य उदय से पहले माखन निकालना है। और कृष्ण भगवान कौन सा मंगलारती जाते हैं, वो तो लेट उठते हैं, उनको लेट उठना है। तो मैया ने पहले उठ करके और दधी जो जमाई थी उसको मंथन कर रही है, मंथन कर रहे हैं। लेकिन इतने पुत्र वत्सलता है, इतने कृष्ण कॉन्शियस है, पुत्र की याद आता है, तो इसलिए पुत्र तभी सोया हुआ है, तो इसलिए पुत्र को याद करके उन्हीं के गुणावली को गाती हुई दधी मंथन कर रही थी, बिल्कुल कृष्ण गान में दधी मंथन कर रही थी। ऐसे माँ परिश्रम कर रही थी, ऐसे परिश्रम को देख करके उनके गभा में उसके चोटी में जो मालती मल्ली का फूल जो लगाई थी, ये फूल सोचे कि ऐसे माता जो कृष्ण के लिए इतने परिश्रम कर रही है, उनके गुणगान कर रही है, इस माँ के सर के ऊपर हम बैठे दिखे हमको, उनके चरण छूना चाहिए। वो मथे के ऊपर से फूल तोड़ तोड़ करके वो चरण में गिर रहे थे माँ जसमती की। अब इस अवस्था में ओ थोड़ा सुबह हो रहा था, ओ लाला के नींद खोला, नींद खोला तो छोटे बच्चे हैं अभी 1.5 साल के, खोलो आँख खोल कर फिर बंद हो जाता है नींद पूरा है, उठ करके टटोला हाथ से, भैया है ही नहीं पास में, लगा के क्यों नहीं है, एब्सेंट क्यों है ही नहीं। तो फिर थोड़ा नींद होगा जब वहीं लेके 10 मिनट के बाद फिर उठा, फिर टटोला है ही नहीं, तम ग्रीवा मोड़ कर मुंह मोड़ कर इधर उधर देखा, कहाँ गई, है ही नहीं कैसे, क्योंकि उठते ही उनको कौन सा ब्रश करना था कुछ करना था, उठते ही दूध पीना था उनको, तो कोई नहाना नहीं है कि मुंह धोना नहीं कुछ नहीं, उठते ही उनको भोग लगाना था, उठते ही देखा माँ पास में नहीं है, इधर उधर देखा कि वो माँ उधर दधी मंथन कर रही, मटका दधी मंथन, उसको लगा ये कौन सा काम है, अब जाना है। अब पहले बार पलंग से उतरने का रिस्क लिया उन्होंने, अभी तक पहले कभी अकेले उतरे नहीं थे, फर्स्ट टाइम अपने सज्जा पर उतरने का लगा कि कैसे, मैया तो है नहीं, मैं कैसे उतरूं, बहुत देखे देखे सोच विचार करके बहुत परिश्रम करके उतरे, पेट के बल पर हाथ दे करके दोनों पैर को पहले डाउनलोड कराए और करके धीरे से अनलोड हो रहे थे। अब सारे देवता ब्रह्मा शिव पर्यंत देख रहे हैं, जो उनके मुखचंद्र को निहार रहे थे इतने ध्यान से, अब देख रहे हैं कि मुंह अगर पेट बिल्कुल पीछे की तरफ, पेट को बल पर हाथ दे करके दोनों लाल लाल छोटी छोटी चरण को ऐसे करके जब नीचे उतार रहे थे, वो चरण का दर्शन स्पष्ट हो रहा था, बड़े बड़े देवता उनके बुद्धि लड़ा रहे थे, ये वज्र अंकुश चिन्ह युक्त चरण में हमारा मन लग जाए, ऐसे चिंतन कर रहे थे। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगा, धीरे 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 अनलोड हो गए। अब उनको लगा कि मैंने बाजी मार लिया, मैंने अकेला अपने आप पलंग से नीचे उतर गया, वेल डन। अब इतनी बड़ी बात अब जाके माँ को बताना है, और क्या, मैं अकेला उतर गया खट से, छोटी मोटी बात है क्या। अब नींद पूरा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हाथ मलती हुए गए, माँ तो दधी मंथन लगते लास्ट हो रहा था, जाकर पकड़ लिए उनको, पकड़ लिए उनको, माँ देख रहे देखो आ गया, अब डिस्टर्ब करेगा जल्दी जल्दी करके, बोले थोड़े और बस 5 मिनट माखन आ गया अभी करने, लेकिन पकड़ लिए मक्खन दंड को जाकर, मैं आ गया फिर क्यों परेशान। एक आचार्य कहते हैं भगवान क्यों माखन मथन दंड पकड़ लिए, वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैया सारे दुनिया के बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र जितने साधक महात्मा सब परिश्रम करते हैं और परिश्रम का परिपूर्ण फल है मैं मुझे प्राप्त करने के लिए, और मैं आपको आकर खुद ही आया आपके पास, मुझे आप लाया नहीं। मैं प्राप्त होने के बाद फिर परिश्रम किस लिए, बंद करे सब, मैं आ चुका हूं। इसलिए मथानी दंड पकड़ते हैं और परिश्रम करना आवश्यकता नहीं है। माँ जसोमती बोले अरे और दो हाथ मार दू माखन उत्तर आया रुक जाओ, लेकिन रुकने नहीं दिए। जसोद वाले छोड़ो अब आ गया और अब तो करने नहीं देगा, बैठ गई। बैठ गए तो भगवान आपने आप स्टेप लिए, चढ़ गए माँ की गोद में, आपने आप चढ़ करके आपने पोजीशन ले लिए और आंचल की ओट में मुंह छिपा करके स्तनपान करने लगे। हाँ, और मुंह में माँ जसोमती की वात्सल्य पीयूष अमृत धारा को जो झर रहा था वात्सल्य कारण उसको मुंह में लेकर पीने लगे और आंचल की ओट से मुंह छिपाते थे, कभी कभी निकाल कर देखते थे, और मुंह में दूध लगा हुआ था। और जसमती माँ उनके इसे दुग्ध मुख को देख करके ऐसे सुंदर लग रहा था, वो हंस रही थी, माँ के हंस देख करके मुंह से दूध फूला था, ऐसे मार देते माँ के मुंह सारे पिचकारी हो जाता था। लो, और माँ ने ऐसे ऐसे करके चलो क्या करे, इसे हे नटखट तो क्या करे, ठीक है तुम तुम्हारा काम करो मैं अपने काम करती हूँ। अपना काम करते करते और देखे कि जो दूध अभी उबल रहा था वही सुरभि पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था, अब कल उसको दही जमाना था। वो दूध सोच रहे क्योंकि इस दिव्य जगत है ना, इसमें सब चिन्मय है, कोई जड़ नहीं है, दूध भी चिन्मय है, मटका आग सब चिन्मय है। वो दूध देखे बोले देखो हम तप कर रहे हैं, कल रात से आग के ऊपर बैठे हैं, आग के ऊपर बैठना मतलब तपस्या करना। बोले हम तपस्या कर रहे हैं अग्नि के ऊपर बैठ कर इतने कठिन तप कर रहे हैं, किसी लिए क्योंकि भगवत सेवा में लगेंगे, भगवत प्रसन्नता हमारा तपस्या के फल है। और ये क्या कर रहे हैं मैया, तो मैया के दूध तो भर भर करके पी रहे हो, तो वो तो उसी संतुष्ट है, हमको तो पियेंगे नहीं, अरे हमारा तपस्या सब बेकार हो जाएगा। हम काल रात से 12 घंटा आग के ऊपर बैठे हैं और वो मैया के दूध पी जा रहे हैं, हमको तो पियेंगे नहीं, धीक के हमारे जीवन हमारा तपस्या बेकार गया तो क्या करेंगे, दुखी होकर बोले माँ के सामने सुसाइड करेंगे। क्या सुसाइड करेंगे, जहर तो खा नहीं सकते, रस्सी लगाने से कैसे करेंगे, बोले और कोई उपाय नहीं आग में घुस करके मरेंगे। तो इसीलिए वो मटका से निकल करके आग में घुस रहे थे, हम उसको उफान आया बोलते हैं वो, लेकिन दिव्य जगत में उफान नहीं आ रहा था दूध में, दूध मटका से निकल करके बोले माँ के सामने आग में घुस करके मरेंगे। देखो हम तपस्या कर रहे दूध पिला रहे, हम तो आपके सामने मर रहे सुसाइड कर। जब निकल रहे थे माँ जसोमती बोला अरे रे कितने करुण हृदय उनका, मेरे सामने क्यों मर रहा है, रुको रुको। अब उनको उतार, उनको दूध बचाने के लिए अब उनको विचार आई, अब एक बात आता है और गई भी दूध बिचारने के लिए, अब विचार आए उनके एक ही लाला है और वो दूध पी रही है, अभी अतृप्त है अभी पी रही है, और उनके दूध पीते हुए मुंह को देख रहे दूध दान करते हुए जसमती इतने परम आनंदित है, इतने परम आनंद को प्राप्त कर रहा है कृष्ण को, उनको मुख को देख करके दूध पीते हुए परम परम आनंद को प्राप्त करती है जसोदा, क्यों उनकी दूध को बचाने के लिए उनको जबरदस्ती छोड़ करके निकाल के बैठा करके क्यों चली गई, ये आनंद उनको अच्छा नहीं लगा क्यों, क्योंकि जो परम वात्सल्यमती माताएं होते हैं उनका एक विशेष गुण दिखाई पड़ती है स्वभाव, क्या अपने पुत्र के खान पान के लिए पुत्र को भी उपेक्षा कर सकते हैं, उनके लिए बेटा के खान पान उनसे मोर इम्पोर्टेंट, बेटा से भी ज्यादा, वो बेटा को रुला करके भी उनके खान पान की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, वो उठा करके खींच करके बैठा दी और चली पड़ी दूध उतारने के लिए। कृष्ण को लगा बताओ मैं उनका एक ही बेटा हूं और मुझे बोलते हैं कि सारे गोकुल में राजकुमार मानते हैं और मैया के मैं एक ही बेटा हूं, और वो तो खुद उठकर आ गई थी, मैं परिश्रम करके पलंग से उतरा, इतने चल करके आया, मैंने खुद उनके स्टेप लेकर के उनके गोद में चढ़ करके दूध पीता मेरे परिश्रम से और मुझे उतार के बैठा दिया, मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ, अतृप्त हूं असंतुष्ट हूं, इस अवस्था में छीन कर बैठा दिया और 5 लीटर दूध बचाने में चल गए, तो मेरा कोई कीमत नहीं है, 5 लीटर दूध मेरे से ज्यादा कीमत है, मुझे इंसल्ट करके उनको बचाने चला गया।
ही फील वेरी ऑफेंडेड. उनको इंसल्ट लगा, बोला अरे कोई कीमत नहीं मेरे घर, ये एक 5 लीटर दूध के बराबर में नहीं हूं, मुझे बैठा दिया और उनके पड़ी, उनको मेरे नहीं पड़ी. अब गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोध आया तो बोला ये दही का मटका सब गड़बड़ कर रहा है, मां को उठा करके सुबह से मेरे से अलग करा रहा है. दही मटका के ऊपर क्रोध आया, दही मटका को जाकर हाथ से, लेकिन इतना वजन था कुछ कर नहीं पाए, देखा हैवी वेट है, कुछ नहीं कर पाए, गुस्सा ज्यादा बढ़ गया, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, असंतुष्ट असमर्थ. तब वो पड़ा था, वो लोड़ा सिल बटा दे पड़ा था, उसको दो हाथों में वेट लिफ्टिंग जैसे ऐसे करके उठाकर लाए, ला करके मार दिया नीचे, मिट्टी का मटका था, फट गया. अब गुस्से से दही के मटके के ऊपर गुस्सा उतार रहे थे, उनको थोड़ी पता था कि फट जाएगा करके, जो भी फट गया फट गया, तो दही सारे निकल आया. अच्छा, उनको लगा ये क्या हो गया, दही को मार आ रहे. अब उनको लगा कि गड़बड़ हो गया, अब तो मां गुस्सा करेगी शायद, अब भाग जाना चाहिए, अब भाग जाना चाहिए, कि यहां से भाग रहे थे, दही पूरा फैल गया था आंगन में, भाग रहे थे आपने चारों चंचल चरण, और दही के ऊपर छप छप करके जा रहा था, बिल्कुल स्टाम्प लगा पड़ रहा था, भाग गए दूसरे पीछे दरवाजे पीछे घर में चले गए. मां जसमती आई, अब आ करके अब देखी कि ये अवस्था, और कोई सोचने का था नहीं, और तो कोई था ही नहीं, मैं था और लाला था, और इसे कांड किया उन्होंने, किया बदमाश, कहां गया बदमाश, ये घर मेरे घर में उदम मजाते तो मतलब इतने नटखट है, उनको सुधारना पड़ेगा, कहां गया, कोई अनुसंधान करना जरूरत नहीं था, क्योंकि भंड भेदक ने अपने स्टाम्प छोड़ रखा है, पदचिन्ह पड़ा हुआ है, उन्हीं के फॉलो करते हुए उस पदचिन्ह को देखते हुए गए. मां जसमती को और डर लगा, बोले अभी इंद्र यज्ञ के लिए मैं कई दिनों से माखन स्टक करके रखा हूं, और अतिथि देवताओं के लिए जो माखन रखा हूं, हो ना हो वासी माखन जाकर खाने लगा, उसी का गड़बड़ कर छुटाना कर दे, उसके लिए और चिंता, और सचमुच उसी माखन के चक्कर में जाकर पहुंच चुके थे, पीछे दरवाजा खोल दिए थे, अब सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो रहा था, सुबह हो रहा था, और ब्रज के जितने जंतु है वो मंगल दर्शन करने के लिए सब पीछे दरवाजा पर सब बड़े बैठे थे, विशेष उनमें सबसे बंदर लोग ज्यादा थे, जितने बानर थे और बाकी जितने प्राणी थे सब थे. और जाकर दरवाजा खोला, खोल करके भगवान देखे कि सारे बानर लोग सब खड़े हैं दर्शन करने के लिए. भगवान ने देखे, बोले क्या करें, ये सब है. तब देखे कि सिक्का पर मटका माखन लोड है, तब एक उखल था, उसको उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ गए. उखल समझते ना, हेमदस्ता बोलते हैं उसको, उसको उल्टा करके चढ़ गए, चढ़ करके माखन निकाल करके ओ बानर लोग सब खड़े थे सर. और बोले भगवान को दया आ गया, बोले देखो ये सब एक आर्मी है, अब पहले मेरे मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, इस त्रेता युग में, और मैंने कुछ उनको पुरस्कार तो दिया नहीं था, पेमेंट दिया नहीं था, चलो इस बार दे देता हूँ, चलो आओ माखन खाओ. तो सब आए बिल्कुल अनुशासित, परफेक्ट डिसिप्लिन से बानर, क्योंकि एक आर्मी है ना, आर्मी लोग बड़े अनुशासित होते हैं, तो बानर लोग बिल्कुल वन बाई वन डिसिप्लिन में आते थे, एक हाथ से लेते थे और लाइन करके बैठते थे और खाना शुरू करते थे. भगवान देखते थे, जैसे आर्मी डिसिप्लिन में से माखन लेकर खाते हैं, भगवान डिस्ट्रीब्यूट करते थे. और जसमती माँ छड़ी लेकर के पीछे से दबे दबे पैर में छिपी छिपी आ रही कि बदमाश को पकड़ कर पीटूंगा, इसी बदमाश कर रहा. और भगवान ने सामने तरफ से करके माखन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको देखा नहीं कि माँ आ रही करके, उनको कोई ध्यान भी नहीं है, लेकिन बानर लोग तो पीछे और देखना, वो देखे बंदर लोग देखे कि माँ ने छड़ी लेकर आ रहे, एक साथ में सब एक सार में भाग गए. जैसे भाग गए खलबली मचा करके, भगवान बोले ये क्यों हो गए, ये तो डिसिप्लिन है सन्ने, वो किस भाग गए, क्या गड़बड़, पीछे मोड़ कर देखे कि खतरा है, डेंजर, इतने डेंजर, सामने माता जी छड़ी लेकर आ रहे. उखल से भागे और कूद करके दौड़े, ओए दौड़ते हुए उसी के भगवान को हम आरती उतारेंगे. ये भगवान तो यही दामोदर लीला, ऐसे अद्भुत माँ उसको दौड़ते दौड़ते पकड़ेगी. ऐसे कहते हैं कि माँ ने दौड़ते हुए द्रुत गति में द्रुत गोप्या जाकर पकड़, बोले ठहरे ना, नहीं मेरे से और भाग रही है, ठहरेगा ना, नहीं धमकी दी, बोले पिटूंगा और जोर से. खड़े हो गए भगवान, बोले और ज्यादा मार पड़ेगा कि क्या होगा. भगवान ने अभी तक कितने चंचलता किए थे, नटखट किए थे, कितनी माँ ने कभी उनको डांटी नहीं थी, छड़ी लेकर कभी मारी नहीं थी, फर्स्ट टाइम उनको छड़ी लेकर उनके पीछे भागी, तो बहुत डर गई, ये व्हाट इज दिस, इसलिए डरे हुए थे.
और इतने डर रहे थे, ससे छिसक करके रो रहे थे। माँ को लगा इतने क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? ना वो छड़ी फेंक दे उसको पहले, उसको पहले फेंको, बहुत डर लग रहा, तुझे दया नहीं आ रहा, मैं इतने डर रहा हूं, तो उस छड़ी को फेंक दो। तो माँ जसमती बोल रहा है कि अरे तुझे तो इतने डर लग रहा है, और लगता है कि माँ बोलती कि मैं आओ कभी नहीं करूंगा, कान पकड़ रहा हूं, कभी नहीं करूंगा, ये बस फर्स्ट टाइम, छोड़ दे मुझे। बोले तुझे भी इतने पता है कि ये गलती है, दुष्टता है, ये नहीं करना चाहिए, क्यों बार बार ऐसे कर रहा है? जब भय लगता है, मार के भय लगता है, इतना ज्ञान है तो उसे दुष्टता क्यों कर रहा है, फिर क्यों माफी मांगता है? ना नहीं, पहले उसे फेंक दो, बताऊंगा पहले छड़ी तो फेंको। बोले मैं छड़ी बाद में फेंकूंगा, पहले बताओ, सच बताओ, क्यों तूने दही के भान फोड़ दिया? सच बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगी, बता दो सच सच। तो भगवान बोले तू कुछ नहीं करोगे, पहले छड़ी तो फेंको, मैं बताऊंगा। बोले ठीक है, छड़ी रख दी। मां देखे कि इतने डर रहा है, छड़ी फेंक दी। सच बताओ, क्यों तूने तोड़ दिया? सच बताओ ना, सच बताओ। तो रोते रोते बोलते हैं कि मैया सच बता रहा हूं, तुम्हें तो दूध पी रहा था गोद में तेरा बैठ करके, तू मुझे जल्दी से उठा करके नीचे बैठा दिया और जल्दी से चल बैठा। अपने पैर में इतने मोटा मोटा कंकड़ पहन रखे ना, वो कंकड़ लगा मटका में, वो मटका फूट गया। मेरा क्या दोष है, बिना दोषी में मुझे डांट रहा है, पीट रहा है, और कंकड़ फोड़ लग करके मटका फटा और दही बाहर आ गया, और सारे बंदर लोग बाहर बैठे थे चाटने के लिए, खाने के लिए आ गए। मैं तो उनको भगा रहा था, घर में पशु आ गए, मैं उनको भगा रहा था, और मेरा क्या दोष है, तुम मेरे छाड़ी छाड़ी लेके मुझे मारने के लिए आ रहे, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं, मेरा क्या दोष है? माँ जसमती सर में हाथ देकर सोच रही, बोले अच्छा, एक तो गलती उसके ऊपर उसको छिपाने के लिए इतने बुद्धि, इतने जुक्ति। जसोदा माँ सोच सर में हाथ देकर बैठ गई, बैठ कर बोलते अरे अरे चतुर चूड़ामणि, अरे चोरों के सरदार, मेरे पति इतने सरल, इतने पूरे गण्य मान्य है, इसी राजा है ब्रज के, नंद महाराज कितने अच्छे व्यक्तित्व तो है, तो उनका बेटे होकर इसे गड़बड़ी कैसे हुआ, ऐसे स्वभाव तेरे अंदर कैसे आया रे? हाँ, इतने सरल, इतने प्रसिद्ध सदाचारी व्यक्ति का तू एक लड़का है, तेरे अंदर इसे बंदर जैसा स्वभाव कैसे आया, ऐसे नटखटपन, बानर जैसा, बंदर जैसा, ऐसे चंचलता, हाँ बंदर को खिला रहे, ओ बानर बंधु इतने नटखट, ऐसे डांट जैसे बोल रहे। तो भगवान ने रो रो कर बोले मैया ठीक है, मुझे छोड़ दो, आज से मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं बानर के पास ही रहूंगा, मैं बानर बंधु है ना, मैं जंगल में जाकर वनवास करूंगा, बंदर के साथ रहूंगा, एक दिन भी तेरे माखन नहीं खाऊंगा, माखन से कुछ कंप्लीट नहीं आएगा, छोड़ दे, मैं जा रहा हूं जंगल। इस अभिमान युक्त बात को सुन करके माँ जसमती बहुत डर गई, रो पड़ी, बोली सच में मेरा बेटा चला जाएगा ना क्या? रो रहा है से मार के भय के मारे, मैं डांट दिया छड़ी दिखा करके, उस डर के भय के मारे चलाना है जंगल में, वो जंग आज तक घर में कोई नौकर नाकर में दास दासी भी नहीं है, वो चला जाएगा तो कौन ढूंढेगा, घर का सारे सुबह सुबह को काम नहीं, सारे काम पड़ी हुई है, मुझे सब काम करना है, और वो जो चला जाएगा जंगल में उसको ढूंढूंगा ना, घर का काम करूंगा। वो तो बोल रहे चला जाएगा, हो नहीं, अभिमान के कारण चला ना जाए। तो बोला क्या करूं, उसको बांध डालूंगी, बांध कर रखूं, घर का काम कर दू, बाद में खिला पिला देखूंगी, उनके खान पान के लिए तो व्यवस्था करना ही होगा, नहीं तो भाग ना जाए, इसलिए उसको बांध डालू, इसी के लिए, उन्हीं के भलाई के लिए, वो चला ना जाए। मां जसमती को बांधने के विचार आई, बांधने के लिए विचार आया, तो आपने कबरी से वो रेबन डोरी निकाल करके बोले बांधना चली, अब बांधने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार के अगाध वात्सल्यमयी मां जसमती की पुत्र वात्सल्यता, और उनके सामने परिपूर्णतम भगवान कृष्ण का भक्त पराधीनता, भक्त वत्सलता, ये दोनों गुण जब इकट्ठा मिलन होता है, जो अद्भुत वैचित्री, जो अद्भुत लीला निकल रहा है, ये है दामोदर लीला। इस लीला के इस अमृत बह रहा है, तो इसी को हम गान करते हैं, आरती करते हैं। केवल इस दामोदर लीला के कारण ही दामोदर मास यही नहीं था, इस महीना में जैसे मैंने बताया था, इस शारदीय रात्रि को देख करके भगवान के मन में भी रास रचाने के लिए मन में विचार आया था, और गोपियों को परम मधुर बांसी तान से उनको बुलाए थे, मिडनाइट में बुला करके जब महामिलन करवाए थे वृंदावन में, लेकिन इस मिलन में भी उनसे अंतर्धान छिप गए थे, और गोपी विरह हुआ था, इस विरह भक्ति के प्रमाण। इस कार्तिक महीना में गोपियों ने भगवान के विरह से होकर के भगवत अन्वेषण कृष्ण अन्वेषण शुरू किए, भगवान को ढूंढने लगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते फिरे ढूंढ ढूंढ कर मिले नहीं रहते, इतने कितने पागल की तरह ढूंढते फिरे जंगल सारा। उस पूरे रास रजनी शारदीय रात ढूंढते जो नहीं मिले, अंततः तो सोच रहे हैं, दोष नहीं दे रहे हैं कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, नहीं, तभी भी कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं। वही भगवान ने जिस परम भक्त का बात गीता में कह रहे थे, मन मना मद भक्त, वही तद मना तन मनस्का तद भावा तद विचेष्टा तदाड़पा, वही गोपियों की उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भगवान। देखो जो मैं बताया था ये एग्जाम्पल वही है। उस गोपियों ने ढूंढते आकर के विचार करते हैं, पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगहु कृष्णम कृष्ण दर्शन लालसहा। तो कृष्ण दर्शन लालसहा, कृष्ण दर्शन करोगे हम, कृष्ण के दर्शन पाएंगे, कृष्ण को देखने के लिए परम व्याकुल मन से अब ये विचार किए, हम ढूंढ रहे हैं, ये अंधकार से अंधकार गहन बन से कृष्ण के छिप गए, हम ढूंढते और छिपते जाएंगे, मिलेंगे थोड़ी। उनके इतने मुलायम कोमल चरण में किसी ने नुकीले कंटा पत्थर रुक रहा, कितना कष्ट होगा वो चिंता कर रहे हैं। तन मनस्का तद भावा, इस भाव के उनके चरण को कितने कष्ट होता होगा, इसको सोच करके गोपी परम विह्वल व्याकुल हो उठती है, व्याकुलता से चिंतन करते, नहीं, उनको जंगल से जंगल हमारे लिए भटकेंगे, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको ढूंढो मत, छोड़ो, अरे ढूंढने से थोड़ी मिल जाएंगे। बोले क्या? बोले अब श्रुति वाक्य नहीं सुना, उपनिषद से नहीं सुना क्या? यमैव सवृणुते तेन लभ्यः, वो तो उनको प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं, कृपा करके स्वयं जिसको दर्शन देना चाहते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं। आपने प्रयास से ढूंढ कर कोई पाया ना पा सकता है, ये उपाय नहीं है। इस श्रुति वाक्य श्रुति प्रमाण को प्रस्थापन करने के लिए, उसी को प्रमाण करने के लिए बोले, नहीं, भगवत दर्शन का एकमात्र कारण हेतु है उनके कृपा, भगवत दर्शन का एकमात्र हेतु है उनके करुणा। तो उनके करुणा प्राप्त कैसे होगा? भगवत करुणा प्राप्त होने का माध्यम है भगवत नाम संकीर्तन। यही रूल को स्थापन करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन ही भगवत कृपा पाने का उपाय है, भगवत कृपा से ही भगवत दर्शन संभव हो सकता है। इसी नियम को स्थापन करने के लिए गोपीगण समस्त गोपिकाएं आज जमुना पुलिन में जहां भगवान से मिले थे, पुनः वही रमण रति में जमुना किनारे वापस इकट्ठा मिल करके एक साथ समवेता जगहु कृष्णा, एक साथ में गान करने लगे, कृष्ण गान कृष्ण नाम संकीर्तन गान करने लगे। यही गोपिका गीत है, वही गोपी गीत को गान करने लगे, वही भगवान के लिए इकट्ठा होकर के एक साथ में रो रो करके जो कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं, इसी से कृष्ण कृपा के प्राप्त होता है और इस कृष्ण कृपा से ही कृष्ण दर्शन प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है। इस श्रुति वाक्य जनित सिद्धांत को इस रास रजनी में इस गोपिकाओं ने स्थापना किए और इसी महीना के लिए हम लोग सब मिल करके शाम को दामोदर आरती करते हैं और वृंदावन में कम से कम बाकी कई जगह में गोपिका गीत गान करते हैं। इस गोपिका गीत गान किए तो भगवान अपने आप को छिपा ना सके, तुरंत मन मथ उन्हीं के सामने उन्हीं के उन्हीं प्रकट हो गए। ये जो गोपिकाओं के गीत था, उनका जो नाम संकीर्तन था, समवेत गायन जो था जमुना किनारे, वो इतने शक्तिशाली इतने प्रभावशाली था, कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य हुए। तो कृष्ण को प्रकट करने के लिए अगर बाध्य कराना चाहते हैं, कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं, तो इसे परम प्रभावशाली इस परम पराक्रमशाली इस गोपिका गीत को इस अद्भुत समय में अद्भुत स्थान में इस परम काल परम समय इस समय में सब मिल करके गाइए और यही आशा रखिए कृष्ण दर्शन लाल सहा। अभी शायद कृष्ण दिख जाए, कृष्ण नहीं दिखे तो राधा श्याम सुंदर तो दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना, नहीं इसी में संतुष्ट भी हो जाएंगे हम लोग, है ना, नहीं इसी को देखकर हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। समवेत भक्त वृंद की ताय गौर हरि प्रेमानंद।